यह रविंद्र सिंह की आवाज है। पुस्तक का नाम संस्कृत शिक्षण, लेखक रामकमल पांडे। द्वितीय अध्याय, संस्कृत भाषा की महत्ता। प्राचीनतम भाषा। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं संसार की प्राचीनतम भाषा है। सभ्यता के ऊषा काल में संस्कृत भाषा का उदय हुआ और सर्वप्रथम भारतवर्ष को ही इस उदय का दर्शन हुआ। जब संसार के अन्य देशों में व्यक्ति पशुओं के स्तर पर रह रहे थे और बंदरों तथा वन मानुषों की भांति सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, उस समय भारत में आर्य लोग सुसभ्य एवं सुसंस्कृत भाषा के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कर रहे थे। विश्व के इतिहासकार छोटे बड़े किसी भी मापदंड से जब भारतीय वाङ्मय को मापने चलते हैं तो बलात् उनकी लेखनी से संस्कृत साहित्य में तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रशंसा के शब्द निकल पड़ते हैं। किसी भी दृष्टिवृण से हम क्यों ना देखें, वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ठहरते हैं। अतः भारत ही नहीं, समस्त संसार के आदिकाल की सभ्यता के परिचय प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत भाषा की शरण में जाना पड़ेगा। मिस्र और मेसोपोटामिया में प्राप्त कुछ अभिलेख संभव हैं, ऋग्वेद के समकालीन या कुछ पूर्ववर्ती हों, किंतु उनमें केवल राजाओं, युद्धों आदि का उल्लेख है। उनमें किसी सुसंबंध विचारधारा के दर्शन नहीं होते। चीन के प्राचीनतम ग्रंथ निश्चित रूप से ऋग्वेद के बाद के हैं। अतः संपूर्ण संसार को सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद ही ऐसा मिलता है जिसमें तत्कालीन समाज का चित्रण हो। लोकमान्य गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद के कुछ सूक्त 6000 ईसा पूर्व में बने और शेष 5000 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद का रचनाकाल याकोबी के अनुसार 7500 वर्ष ईसा पूर्व, व्यूलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व तथा मैक्स मूलर के अनुसार 1000 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग है। मैक्स मूलर ने प्राचीनतम सूक्तों के विषय में निश्चयात्मक बात करते हुए उन्हें 4000 ईसा पूर्व में होने तक की संभावना बताई है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के विषय 25000 से 50000 ईसा पूर्व तक के हैं। वस्तुतः ऋग्वेद का रचनाकाल निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए भारतीय परंपरा वेदों को अनादि और अपौरुषेय कहने के पक्ष में है। संस्कृत साहित्य का महत्व। भारतीय संस्कृति का स्रोत संस्कृत भाषा है। हमारी संस्कृति व सभ्यता वेदों, स्मृतियों एवं पुराणों से निकली है। हमारे 16 संस्कार संस्कृत भाषा में ही कराए जाते हैं। संस्कृत मंत्रों के साथ ही बालक के जात कर्म, नामकरण, अन्न प्राशन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होते हैं। हम भारतीय व्यक्तियों के नाम टॉम, डिक, मेरी, जेम्स, चार्ल्स जैसे निरर्थक शब्दों के रूप में ना होकर सदा सार्थक शब्दों में होते हैं। हम किसी को प्रणाम करते हैं करते समय केवल प्रातः, दोपहर, अपरान, शाम या रात्रि के शुभ होने की बात ही नहीं करते, वरन प्रातः, दोपहर, रात्रि आदि के श्रेष्ठा को भी जय राम जी, राम राम, सीता राम आदि शब्द कहकर स्मरण करते हैं। हम स्पष्ट रूप में अपने से बड़े के समक्ष पहुँचने पर नमस्कार या प्रणाम करते हैं, जिसका अर्थ ही झुकना है, अर्थात हम अपने से बड़े के गौरव के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं। हमारे आशीर्वाद भी सार्थक हैं, आयुष्मान भव, सौभाग्यशाली भव आदि कहकर हम अभिवादन एवं आशीर्वाद दोनों को सफल कर देते हैं। हम अपने से बड़े को उच्च आसन देते हैं। अतिथि का सत्कार, सामान्य वार्तालाप आदि सभी से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं शास्त्रीय आदेशों से नियंत्रित हैं। भारतीय समाज में जीवन शास्त्रीय मर्यादाओं से नियंत्रित है। आजकल किशोर प्रायः शिष्टाचार के नियमों की अवहेलना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है। भाषा और संस्कृति का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। अंग्रेजी के जन्म स्थान इंग्लैंड की जलवायु बड़ी सर्द है, अतः वहाँ पर अतिथि का गर्म स्वागत किया जाता है और उनके यहाँ शीत शब्द अनादर का द्योतक है। हमारे यहाँ की संस्कृति में शीतल जल से अतिथि का स्वागत किया जाता है। इस प्रकार की भिन्नता होने के कारण अंग्रेजी में हमारा जो चिंतन चलता है वह भारतीय संस्कृति के विपरीत पड़ जाता है। भारतीय संस्कृति के विषय में भी सामान्य युवक के मस्तिष्क में कुछ भ्रम विद्यमान रहता है। सामाजिक जीवन की शैली को हम संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। आज भारतीय समाज की जो जीवन पद्धति है, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो मूल्य हैं, वे सभी भारतीय नहीं हैं। इसीलिए तो कभी कभी भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार की बात कही जाती है। सभ्यता का सदा विकास होता रहता है, किंतु संस्कृति के विषय में सभ्यता के परिवर्तन वाली बात पूर्णतः लागू नहीं होती। संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, किंतु वाय कलेवर में ही। संस्कृति की आत्मा निर्विकार बनी रहती है। जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति की इस अजर अमर आत्मा को नहीं पहचाना, वह राष्ट्र अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। कुछ आधुनिक राजनीतिक नेता, समाजशास्त्री तथा कथा कहित शिक्षा शास्त्री यह कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि आधुनिक युग में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधारा को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि समाजवाद स्वर्ग ला देगा और हमारा लक्ष्य पृथ्वी पर स्वर्ग को लाना ही तो है। समाजवाद से संस्कृत भाषा या संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, किंतु इसकी आड़ में संस्कृति पर कुठाराघात उचित नहीं। ऐसे स्वयंभू विद्वानों को लेनिन की यह बात याद करनी चाहिए कि समाजवाद आपको स्वर्ग तक पहुंचा देगा, किंतु बिना संस्कृति के आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति की आत्मा को जो विद्वान अंग्रेजी के माध्यम से पहचान कर चलते हैं, वे प्रायः भूल कर बैठते हैं। प्रसिद्ध आंग्ल कवि मिल्टन ने अपनी कविताओं में आगरा, लाहौर जैसे नगरों के वैभव का वर्णन किया है, किंतु यह वर्णन पूर्ण रूप से सही नहीं है। ए बी दुबोए द्वारा सन 1817 में रचित हिंदू मैनर्स एंड सेरेमनीज, दुपरोन द्वारा रचित औपनिखत उपनिषद का लैटिन अनुवाद, सन 1875 में प्रकाशित और सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा रचित भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद, विसेंट स्मिथ द्वारा रचा गया भारत का इतिहास, मैक्स मूलर द्वारा वैदिक साहित्य की व्याख्या, विलियम जेम्स द्वारा सन 1784 में रचित शकुंतला नाटक का अंग्रेजी रूपांतर। अच्छे कार्य होते हुए भी भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूपेण चित्रित नहीं करते। अनुवाद सदा अनुवाद ही होता है। संस्कृति साहित्य के अक्षय भंडार का रसास्वादन करने के लिए और भारतीय संस्कृति से परिचय प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है।